अध्याय 9 बारहों का प्रेषण। ईसा ने बारहों को बुलाकर उन्हें सब अवदूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तब ईसा ने उन्हें ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा। उन्होंने उनसे कहा,
रास्ते के लिए कुछ भी न ले जाओ, न लाठी, न छोली, न रोटी, न रुपया, अपने लिए दो कुर्ते भी न रखो। जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि लोग तुम्हारा स्वागत ना करें तो उनके नगर से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो।
वे चले गए और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गांव-गांव घूमते रहे। हेरोद और ईसा। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि योहन मृतकों में से जी उठा है, कुछ कहते थे कि एलियस प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा,
योहन का तो मैंने सिर कटवा दिया, फिर ये कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूं?
और वो ईसा को देखने के लिए उत्सुक था। रोटियों का चमत्कार। प्रेरितों ने लौटकर ईसा को बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। वे उन्हें अपने साथ लेकर बेतसाइदा नगर की ओर एक निर्जन स्थान गए, किंतु लोगों को इसका पता चल गया और वे भी उनके पीछे हो लिए। ईसा ने उनका स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के विषय में उनको शिक्षा दी और बीमारों को अच्छा किया। अब दिन ढलने लगा था। बारहों ने उनके पास आकर कहा,
लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर रहने और खाने का प्रबंध कर सकें। यहां तो हम लोग निर्जन स्थान में हैं।
ईसा ने उन्हें उत्तर दिया,
तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो।
उन्होंने कहा,
हमारे पास तो केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम स्वयं जाकर उन सबों के लिए खाना खरीदें?
वहां लगभग 5,000 पुरुष थे। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा,
50-50 कर उन्हें बैठा दो।
उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब ईसा ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली, स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें तोड़ तोड़ कर वे अपने शिष्यों को देते गए, ताकि वे उन्हें लोगों में बांट दें। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। पेत्रुस का विश्वास। ईसा किसी दिन एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। ईसा ने उनसे पूछा,
मैं कौन हूं? इस विषय में लोग क्या कहते हैं?
उन्होंने उत्तर दिया,
योहन बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है।
ईसा ने उनसे कहा,
और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं?
पेत्रुस ने उत्तर दिया,
ईश्वर के मसीह।
उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे ये बात किसी को भी नहीं बताएं। दुख भोग की प्रथम भविष्यवाणी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा,
मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा।
आत्मत्याग की आवश्यकता। इसके बाद ईसा ने सबों से कहा,
जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वो उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे या अपना सर्वनाश कर ले। जो मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा जब वो अपने पिता तथा पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा के साथ आएगा। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, यहां कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे ईश्वर का राज्य ना देख लें।
ईसा का रूपांतरण। इन बातों के करीब 8 दिन बाद ईसा पेत्रुस, योहन और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय ईसा के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र उज्जवल होकर जगमगा उठे। 2 पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियस थे जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेत्रुस और उसके साथी जो ऊंघ रहे थे अब पूरी तरह जाग गए। उन्होंने ईसा की महिमा को और उनके साथ उन 2 पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेत्रुस ने ईसा से कहा,
गुरुवर, यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए।
उसे पता नहीं था कि वो क्या कह रहा है। वो बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से ये वाणी सुनाई पड़ी,
ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो।
वाणी समाप्त होने पर ईसा अकेले ही रह गए। शिष्य इस संबंध में चुप रहे और उन्होंने जो देखा था उस विषय पर वे उन दिनों किसी से कुछ नहीं बोले। अब दूधग्रस्त लड़का। दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक विशाल जनसमूह ईसा से मिलने आया। उसमें एक मनुष्य ने पुकार कर कहा,
गुरुवर, आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि करें। वो मेरा एकलौता है, उसे आप दूध लग जाया करता है, जिससे वो अचानक चिल्ला उठता है और फेन उगलता है और उसका शरीर एंटने लगता है। वो उसकी नस नस तोड़कर बड़ी मुश्किल से उससे निकलता है। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने की प्रार्थना की परंतु मैं ऐसा नहीं कर सके।
ईसा ने उत्तर दिया,
अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहूं। अपने पुत्र को यहां ले आओ।
लड़का पास आ ही रहा था कि अब्दूत ने उसे भूमि पर पटक कर मरोड़ दिया, किंतु ईसा ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को चंगा कर उसके पिता को सौंप दिया। ईश्वर का ये प्रताप देखकर सबके सब विस्मय विमुग्ध हो गए। दुख भोग की द्वितीय भविष्यवाणी। सब लोग ईसा के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा,
तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा।
परंतु ये बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा रह गया और वे इसे समझ नहीं पाते थे। इसके विषय में ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। बड़ा कौन? शिष्यों में यह विवाद छिड़ गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। ईसा ने उनके विचार जानकर एक बालक को बुलाया और उसे अपने पास खड़ा कर उनसे कहा,
जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वो उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि तुम सबों में जो छोटा है वही बड़ा है।
उदारता। योहन ने कहा,
गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अपदूतों को निकालते देखा है और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वो हमारी तरह आपका अनुसरण नहीं करता।
ईसा ने कहा,
उसे मत रोको, जो तुम्हारे विरुद्ध नहीं है वो तुम्हारे साथ है।
समारिया में अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर ईसा ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने ईसा के रहने का प्रबंध करने समारियों के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने ईसा का स्वागत करने से इनकार किया, क्योंकि वो यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और योहन ये सुनकर बोल उठे,
प्रभु, आप चाहें तो हम यह कह दें कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे।
पर ईसा ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। शिष्य बनने की शर्तें। ईसा अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा,
आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा।
ईसा ने उसे उत्तर दिया,
लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है।
उन्होंने किसी दूसरे से कहा,
मेरे पीछे चले आओ।
परंतु उसने उत्तर दिया,
प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए।
ईसा ने उससे कहा,
मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो।
फिर कोई दूसरा बोला,
प्रभु, मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए।
ईसा ने उससे कहा,
हल्की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वो ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं है।